SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने संसद बैठक रद्द करने की भरपाई में अतिरिक्त बैठकें करने का किया वादा। छोटे व्यवसायों द्वारा रानी के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए सार्वजनिक अवकाश के आर्थिक प्रभाव पर उठाए सवाल। और टेनिस में स्पेनिश टेनिस चैंपियन कार्लोस अल्कराज ने जीता 2022 US ओपन का खिताब। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने महारानी एलिजाबेथ के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए संसदीय बैठक को रद्द करने के अपने सरकार के फैसले का बचाव किया है। सवाल उठाया गया है कि फेडरल सरकार ने संसद को 15 दिनों के लिए क्यों निलंबित कर दिया है, जबकि यूनाइटेड किंगडम की संसद में कोई रुकावट नहीं हुई है। शोक प्रस्ताव की अनुमति देने के लिए संसद की बैठक 23 सितंबर को आयोजित होगी। श्री अल्बनीजी कहते हैं कि अब अक्टूबर के अंत से पहले अतिरिक्त बैठकें निर्धारित की जाएंगी।
I as Prime Minister have followed the procedures that have been in place for a lot longer than I've been in place as Prime Minister. I think there is something to be said for a Prime Minister who follows tradition, who follows protocols and who follows order. That is something that I hope to define my Prime Ministership is respect for those traditions.
संसद 26 से 28 सितंबर के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रिचर्ड मार्लिस के साथ फिर से नियमित की जाएगी, जबकि श्री अल्बनीजी दिवंगत नेता शिंजो आबे के अंतिम संस्कार के लिए जापान जाएंगे। साथ में प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने ये भी पुष्टि की है कि अगले गुरुवार सुबह 11 बजे क्वीन के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक आयोजित किया जाएगा और उसी दिन सार्वजनिक अवकाश यानी पब्लिक हॉलिडे की पुष्टि की। ये वो दिन है जब श्री अल्बनीजी और गवर्नर जनरल यूके से लौटेंगे, जहां वे लंदन के सेंट जॉयल्स कैथेड्रल में क्वीन के आधिकारिक अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। श्री अल्बनीजी ने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया का स्मारक संसद के ग्रेट हॉल में होगा। दूसरी तरफ विभिन्न व्यवसाय और उद्योग निकाय अगले सप्ताह क्वीन एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देने के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन रियल्टर्स एसोसिएशन के अनुसार 22 सितंबर को एक बार की सार्वजनिक अवकाश से अर्थव्यवस्था की लागत $1.5 बिलियन तक हो सकती है। काउंसिल ऑफ स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया की मुख्य कार्यकारी एलेक्सी बॉयड कहती हैं कि कुछ सदस्य छुट्टी का स्वागत कर रहे हैं, जबकि अन्य संघर्ष करेंगे।
If we take sectors like the small business economy who are appointment based, those such as naturopaths or perhaps massage therapists or hair and beauty, for example, it's going to be quite difficult for them to manage those appointments. Do they decide to close or do they decide to remain open? And for some of them, that might mean that they actually run at a loss. So what's very important here is that small business retain that autonomy to make those decisions about whether they shrink their hours or perhaps extend their hours or run at a loss or decide to close their doors entirely. It's very important that small businesses are allowed to make that decision as to what's best for them and their staff.
विक्टोरिया ने मेलबर्न के गवर्नमेंट हाउस में आधिकारिक तौर पर किंग चार्ल्स 3 को सम्राट घोषित किया है। प्रीमियर डैनियल एंड्रयूज ने पुष्टि की है कि संसद के दोनों सदन कल यानी मंगलवार को बैठेंगे ताकि सांसदों को नए अधिपति के तहत शपथ दिलाई जा सके। विक्टोरिया एकमात्र राज्य या क्षेत्र है जिसमें सांसदों को संवैधानिक रूप से अपने पूर्ववर्ती की मृत्यु के बाद नए सम्राट के प्रति निष्ठा की शपथ लेने की आवश्यकता होती है। तब संसद सम्मान के रूप में एक सप्ताह के लिए स्थगित हो जाएगी और राज्य चुनावों से पहले अंतिम दो दिनों के लिए 20 सितंबर को वापस शुरू होगी। अपने आधिकारिक उद्घोषणा में विक्टोरियन गवर्नर लिंडा डिसोग बताती हैं कि विक्टोरिया का किंग चार्ल्स के साथ विशेष संबंध है।
We also welcome a king who spent part of his formative time here in Victoria, a monarch who forged his own special connection with us when in 1966 he attended the Timbertop campus of Geelong Grammar School. It's a connection promoted by his visits since then and the messages of support that he's given, including recently when we faced the challenges of a global pandemic.
न्यू साउथ वेल्स के पूर्व डेप्यूटी लिबरल पार्टी के नेता स्टुअर्ट आयर्स की एक स्वतंत्र समीक्षा ने जॉन बैरलारो की न्यूयॉर्क व्यापार नौकरी में पदोन्नति के संबंध में उनके नाम को मंजूरी दे दी है। प्रमुख बैरिस्टर ब्रूस मैकलिंगटॉक एससी द्वारा की गई समीक्षा में पाया गया कि श्री आयर्स ने मंत्रिस्तरीय आचार संहिता के तहत अपने दायित्वों का पालन किया। विवादास्पद व्यापार पोस्टिंग में एक अलग रिपोर्ट के बाद चयन प्रक्रिया के दौरान विभाग के सचिव के साथ उनकी बातचीत के बारे में सवाल उठाए गए, उसके बाद उपनेता और व्यापार मंत्री के पद से हट गए थे। अगर मैकलिंगटॉक रिपोर्ट से उन्हें मंजूरी मिल जाती है तो क्या उनका कैबिनेट में वापस स्वागत किया जाएगा? इस सवाल पर श्री पेरोटे ने कुछ कहने से इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के लिए जारी समर्थन का वादा किया है और रूस के खिलाफ देश के हालिया प्रतिक्रिया को प्रेरणादायक बताया है। ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में यूक्रेन को समर्थन देने वाला सबसे बड़ा गैर नेटो योगदानकर्ता है, जो जुलाई तक $388 मिलियन की सैन्य सहायता की आपूर्ति करता है। श्री माल्स ने यूक्रेन के बढ़ते जवाबी हमले के बावजूद एबीसी को बताया, जिसने सप्ताहांत में रूसी सैनिकों को पूर्वी खार्किव से पीछे हटते देखा है, युद्ध का ये परिणाम अपरिहार्य है।
This needs ongoing support, and there is a very important principle at stake here. You know, we need to be promoting a global rules-based order. It is completely unacceptable that a large country seeks to impose itself on a smaller neighbour, not by reference to any international rule of law, but by reference to might and power. I mean, that proposition simply can't stand.
पर्थ के उत्तरी उपनगर में पुलिस की गोली लगने से एक 35 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। रविवार की रात पुलिस को पैडबरी के एक घर में सेंट जॉन्स एम्बुलेंस का समर्थन करने के लिए बुलाया गया, जो एक चिकित्सा आपात स्थिति का जवाब दे रहे थे। पुलिस ने बताया कि खून से लथपथ एक व्यक्ति ने उन पर चाकू से हमला किया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पुलिस अधीक्षक टोनी फ्लेक बताते हैं कि पुलिस ने अपनी प्रतिक्रिया में उनके प्रशिक्षण का अनुपालन किया और आगे के हमले को रोका।
They had very little time to react. And they were backing off down a very steep driveway. And just the visual image that I saw in a body-worn video was enough to distract you, but to keep the presence of mind and to affect your training. My compliments go out to that police officer.
अमेरिका लगातार खाद्य और ईंधन संकट से जूझने वाले श्रीलंका को $60 मिलियन की सहायता प्रदान कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट चीफ कहते हैं कि देश के गहरे वित्तीय संकट से निपटने के लिए $40 मिलियन उर्वरक आयात और मानवीय जरूरतों के लिए $20 मिलियन खर्च होंगे। श्रीलंका की अपनी यात्रा के दौरान समांथा पावर ने चल रहे संकट को दूर करने के लिए अमेरिका से समर्थन का वादा किया।
The Sri Lankan people, united by their conviction, came together not long ago to demand change. And I want to reiterate that the United States is right here standing with you in your hour of need. Yesterday, I announced that the United States is providing an additional $40 million to get fertilizer into the hands of as many as 1 million farmers ahead of the upcoming planting season.
अमेरिका में हुए 11 सितंबर के हमलों में मारे गए लगभग 3,000 अमेरिकियों के रिश्तेदारों ने 21वीं वर्षगांठ के लिए एक स्मारक सेवा में भाग लिया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने 9/11 स्मारक पर आयोजित समारोह में भाग लिया। हमले के बाद के वर्षों में पैदा हुए कई रिश्तेदारों के साथ परिवारों ने सभी पीड़ितों के नाम पढ़े। डाइने मैसरोली ने 9/11 के हमले के दौरान अपने पति माइकल को खो दिया और कहा कि 21 साल बीत जाने के बावजूद दर्द कम नहीं हुआ है।
There's a build-up, like, you know, over the summer, you know, a little more anxiety every day. And to this point, it's just always, you know, an anxious day. And after the day's over, when I go home, then you're just, like, physically exhausted, like you ran a marathon. And but, yeah, no, never has changed at all. I thought, you know, maybe it would get less. The people said that. Never. It's exactly the same. The rest of the year, you go, you know, you get by and all that stuff, but this time of year is exactly the same.
अब जानेंगे डॉलर का हाल. मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के आ जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 68 सेंट है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 54.41 रुपए हो गई है. अब खबरें खेल जगत से. स्पेनिश टेनिस चैंपियन कार्लोस अल्काराज ने कैस्पर रट को हराकर 2022 यूएस ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है. 19 वर्षीय ने चौथे और अंतिम सेट में रट को 6-3 से हराया, लेकिन ये अंतिम मिनट था जिसने भीड़ को मंत्रमुग्ध कर लिया था. स्पेनिश किशोर ने एक आसान स्मैश से चूकने से पहले पहला पॉइंट हासिल किया और अंत में 23 वर्षीय नॉर्वेजियन को हराकर गौरव हासिल किया. और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान. पर्थ में कल बारिश हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा. एडलेड में धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 7 और अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक रहेगा. मेलबर्न में बादल छाए रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 6 और अधिकतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा. कैनबेरा में भी बादल छाए रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 0 और अधिकतम तापमान 13 डिग्री तक रहेगा. सिडनी में बारिश कम होगी और वहां का न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा. ब्रिस्बेन में धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा. डार्विन में भी धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान रहेगा 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री. और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल आंशिक बादल रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा. मौसम की जानकारी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं. धन्यवाद.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.